ओम शांति। आज 23 अगस्त 2020 है। आप हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली की ओरिजिनल डेट है 10th मार्च 1986 और मुरली का टाइटल है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। संसार में द्वापर युग से लेकर अब तक अनेक बादशाह हुए हैं, लेकिन यदि उनके जीवन को देखें तो उनका जीवन अनेक संघर्षों से भरा हुआ था और उन संघर्षों को फेस करते करते उनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की फिक्र देखने में आती है। इस संगम युग पर भगवान जो बादशाहों के बादशाह हैं, वही संसार में आकर के आप हम सभी बच्चों को बेफिक्र बादशाह बनने की टेक्निक सिखाते हैं। संसार में समस्याएं बहुत हैं, परिस्थितियां विकराल हैं, लेकिन इन समस्याओं के, इन परिस्थितियों के होते हुए भी हम जीवन में बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कैसे करें, उसके लिए बाबा हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्निक सिखाते हैं। तो आज की मुरली को हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। मुरली का मुख्य भाग, जो मुख्य मुरली है, मेन मुरली है। मुरली का सेकंड भाग, यूरोप निवासी भाई बहनों से मुलाकात। मुरली का तीसरा भाग, यूके के भाई बहनों से मुलाकात। और मुरली का चौथा भाग, बाप की दुआएं प्राप्त करनी है तो आज्ञाकारी बनो। और लास्ट 5वां भाग कौन सा होगा? आज्ञाकारी बनने से फायदे, 7 बातें हैं। तो टोटल मुरली से लगभग 32 पॉइंट्स हैं। उसके माध्यम से हम बाबा की मुरली को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य मुरली में पहली पॉइंट्स है संगम युग की विचित्र राजसभा। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा आज बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संसार में अनेक सभाएं होती हैं और अनेक प्रकार के बादशाह होते हैं, लेकिन संगम युग पर जो सभा है और इस सभा के जो मेंबर्स हैं, जो बादशाह हैं, वो बेफिक्र हैं। तो बाबा कहते हैं ये राज्यसभा विचित्र सभा है, क्योंकि इस सभा में जो भी बादशाह हैं वो बेफिक्र हैं। बाबा कहते हैं ये संगम युग की सभा सत्ययुगी राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है। क्यों? बाबा ने कहा सत्ययुग में जो वहां के बादशाह हैं, उनको फिकर और फकुर का ज्ञान उनके बुद्धि में, स्मृति में इमर्ज नहीं रहता, वो उससे अनभिज्ञ हैं। और संसार में जो आत्माएं, जो बादशाह हैं या संसार की अन्य आत्माएं हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फिक्र हैं। सुबह से लेकर रात तक बाबा ने कहा आप स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, संबंधियों के बारे में, साथ साथ कारोबार के बारे में, उनके जीवन में अनेक प्रकार की फिक्र ही फिक्र है। और बाबा कहते हैं आप बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह बन चलते हो। अमृत वेले उठते हैं तो बादशाहों के बादशाह से मुलाकात करते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत ही बेफिक्र बादशाह स्थिति से होती है। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले से आपकी दिनचर्या ही बेफिक्र बादशाह स्थिति से शुरू होती है। भोजन करते हो तो भी बेफिक्र बादशाह बन करके, संबंध संपर्क में आते हो तो भी बेफिक्र बादशाह बन करके, कारोबार करते हो तो भी बेफिक्र बादशाह बन करके, और आपको नींद करते हो तो भी निश्चिंत होकर के बेफिक्र बादशाह बन करके, आराम की नींद करते हो, सुख की नींद करते हो, चैन की नींद करते हो। संसार में लोग कहते हैं कि घोड़े बेचकर सोते हैं, एक भगवान कहते हैं कि आपकी नींद जो है वो बेफिक्र की नींद है। आपको नींद में कोई चिंता नहीं है। संसार के लोगों को चिंता होती है अगले दिन के लिए कि कल क्या होगा, इसीलिए वो अनेक प्रकार की गोलियां लेकर के सोते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंता है, अनेक प्रकार का फिक्र है, स्वयं को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, अपने कामकाज को लेकर के। लेकिन संगम योगी बेफिक्र बादशाह आत्माओं के जीवन में बाबा का कोई भी फिक्र नहीं है। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि सभी ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो, अपने आप को ऐसा बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो, तो जवाब में क्या कहेंगे? हाँ, यस। मुरली की दूसरी पॉइंट है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति, और वो युक्ति है निमित्त भाव। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं ने सारे बोझ बाप को दे करके अपने आप को हल्का बना दिया। सारे संसार का बोझ उठाने वाला भगवान जब इस संसार में आया और उसने ऑफर किया कि अपने सभी बोझ मुझे सौंप दो और आप इस जीवन का आनंद लो, अपने जीवन का, जीवन के मौज लो, तो बाबा कहते हैं कि आपने अपने सभी बोझ बाप को दे दिए, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो बाबा ने कहा कि आप निमित्त बन करके कामकाज करते हो, निमित्त बन करके अपनी कारोबार चलाते हो, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त कर्मयोगी हूं, मैं निमित्त सेवाधारी हूं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त बन करके ये सभी कर रहा हूं। अगर ये स्मृति सदा और स्वाभाविक रहती है तो बाबा ने कहा कि आप सदा बेफिक्र बादशाह स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी पॉइंट है लाइट का ताज और बोझ के टोकरे। बाबा ने कहा कि अगर गलती से भी अगर किसी प्रकार का व्यर्थ का बोझ अपने सिर पर ले लेते हो तो लाइट का ताज उतर जाता है और सर पर अनेक प्रकार के व्यर्थ के टोकरे आ जाते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की बातें होती हैं और उन बातों के चलते अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलना स्वाभाविक है। लेकिन बाबा ने कहा कि यदि आप पॉजिटिव चिंतन में रहते हैं, श्रेष्ठ विचारों के चिंतन में रहते हैं, तो आपके सिर पर लाइट का ताज होता है, और यदि किसी प्रकार के किसी भी कारण से मन में व्यर्थ चिंतन चलता है, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो आपके सिर पर अनेक प्रकार के बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को देखो, अपने सामने एक चित्र रखो, चित्र इमर्ज करो कि एक लाइट का ताज वाला और दूसरा बोझ के टोकरे वाला, जिस टोकरे में अनेक प्रकार के बोझ हैं, अपनी जिम्मेवारियों के बोझ, आने वाली बातों के बारे में चिंतन, उसकी सोच का बोझ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, तो जीवन में जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उस टोकरे में उसको देखो। तो दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? बाबा ने पूछा क्या पसंद करेंगे? लाइट का ताज वाला चित्र। तो बाबा कहते हैं इसके लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये मंत्र पक्का करो, एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई। अगर ये पाठ पक्का है, ये मंत्र पक्का है, तो जीवन में कोई भी बोझ नहीं होगा, क्योंकि जहां भगवान का साथ है वहां हर बात सहज है, और जहां हर बात सहज है वहां कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। तो तीसरी पॉइंट है लाइट का ताज और बोझ का टोकरा, दोनों की तुलना। चौथी पॉइंट है बेफिक्र बादशाह आत्माओं की विशेषता। उनकी विशेषता क्या होगी? बेफिक्र बादशाह जो आत्माएं हैं वो आत्माएं हमेशा डबल लाइट होंगी, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं होगा। और उसके लिए बाबा ने कहा कि जब आप राजा बनते हो तब आप अपनी इंद्रियों पर राज करते हो, राजा बनते हो तो इंद्रियां आपके वश में रहती हैं। तो राजा बनेंगे तो बाबा ने कहा कि आपकी इंद्रियां आपके वश में होंगी, आप इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बनेंगे। तो ये मुख्य मुरली से चार बातें थी। पहली कौन सी पॉइंट? ये संगम युग की विचित्र राज्यसभा। दूसरी पॉइंट बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तीसरी पॉइंट डबल लाइट का ताज और टोकरे, बोझ के टोकरे। तीसरी पॉइंट्स, चौथी पॉइंट बेफिक्र बादशाह की आत्माओं की विशेषता। मुरली का सेकंड भाग है यूरोप निवासी भाई बहनों से मुलाकात। उसने विशेष पांच बातें निकाली हैं, जिसमें पहली बात है कि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा ने कहा कि यूरोप वासी जो बच्चे हैं उन्होंने सेवा का विस्तार बहुत किया है, और अपने आसपास के देशों का कल्याण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम प्लान्स बनाते रहते हैं। तो जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी कल्याणकारी हैं, रहम दे लें। तो बाबा ने कहा कि जो यूरोप वासी बच्चे हैं उनके बुद्धि में उनके दिल में सभी आत्माओं के प्रति रहम की भावना है, कि जैसे हम भगवान के बने, भगवान के वारिस बने और भगवान से सर्व प्राप्तियां कर अपने जीवन को माला माल बना रहे हैं, तो संसार की आत्माएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, अनेक प्रकार के अधीनता का अनुभव कर रही हैं, अनेक प्रकार के फिक्रातों में जीवन जी रहे हैं, वो आत्माएं भी बाप के बने और बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। दूसरी पॉइंट है आह्वान की चुंबकीय आकर्षण। आह्वान के चुंबकीय आकर्षण, बाबा ने कहा कि यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर के बाप दादा ने विदेश के बच्चों को याद किया है, और उसके फलस्वरूप विश्व के कोने कोने से बच्चे बाप के सामने मधुबन में पहुंचे हैं। तो बाबा ने विदेश के बच्चों को, विदेश के भाई बहनों को भिन्न भिन्न संदर्भ से याद किया, यज्ञ की स्थापना से लेकर के आगे भिन्न भिन्न समय पर। कौन कौन सी बातों को लेकर के? बाबा ने कहा कि जो विदेश के बच्चे हैं वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, भारत की जो आत्माएं हैं जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं, जगाने के बाद भी नहीं जाग रही हैं, तो ऐसी आत्माओं को जगाने के निमित्त विदेश के बच्चे बनेंगे। आराम की नींद सोई है, और बाबा ने कहा कि बाप का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी का, विश्व पिता का, वो टाइटल पूरा तब होगा जब विदेश के बच्चे बाप के पास आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर के बाप दादा ने विदेश के बच्चों को याद किया, तो उसी आकर्षण के फलस्वरूप विदेश के बच्चे, विदेश की आत्माएं उससे आकर्षित होकर के अभी बाप दादा के सम्मुख पहुंची हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप के पास पहुंचे हैं, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ, इसके बारे में कभी सोचा? इसके बारे में अगर बैठकर सोचेंगे तो आपको बहुत विचित्र अनुभव होगा। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा का ये अनुभव है कि हम संसार में कहाँ कहाँ खोए हुए थे, एक अलग दुनिया में ही अपने कोई ख्याल और ख्वाब थे, लेकिन भगवान ने कैसे हमें कहाँ से किस विधि से सिलेक्ट किया, अपना बनाया, ये हर एक के जीवन की एक विचित्र कहानी है। तो बाबा ने कहा कि ये बाप के आह्वान का आकर्षण है जो आपको विश्व के कोने कोने से खींच करके इस परिवार में लाए। तो बाबा ने कहा कभी इस बात के बारे में बैठकर सोचिएगा तो आपको बहुत विचित्र अनुभव होंगे। बाप के बने हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन बाप के हम कैसे बन गए उसके बाद उस बात के बारे में भी बैठ के सोचिएगा तो आपको बहुत विचित्र, बहुत अलौकिक, एक अनोखे खुशी की अनुभूति होगी। इस संसार के कोने कोने में कहाँ कहाँ पड़े हुए थे और भगवान ने हमें वहां से निकालकर अपने परिवार का सदस्य बनाया। तीसरी पॉइंट है ड्रामा की नूंध, मुरली में है ड्रामा की गूंथ। तो बाबा ने कहा कि ये ड्रामा में नूंध है, कल्प कल्प आप बाप के बच्चे बनते हो, कोने कोने से निकल करके इस ब्राह्मण परिवार किस तरह से बनते हो, तो ये ड्रामा की नूंध है। तो इस ड्रामा की नूंध के अनुसार कल्प पहले माफिक इस कल्प में भी कोने कोने से निकल करके इस ब्राह्मण परिवार के सदस्य बने हो। तो बाबा ने ड्रामा को याद किया, ये ड्रामा में आपका ये पार्ट नूंध है, फिक्स है। चौथी पॉइंट है मेकअप, रूहानियत का मेकअप। तो बाबा ने कहा कि ये मधुबन जो है वो रूहानियत का मेकअप करने का, फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। तो बाबा कहते हैं कि विदेशियों को, फॉरेनर्स को विशेष मेकअप करने का शौक रहता है। तो बाबा ने कहा कि आपके चेहरे पर रूहानियत की रौनक, रूहानियत की आभा, रूहानियत का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इसके आधार है ये मधुबन जो है वो मेकअप करने का स्थान है। तो बाबा ने कहा कि जो संसार का जो मेकअप है उसमें बहुत खर्चा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि उस मेकअप में जो केमिकल यूज करते हैं वो स्किन के लिए नुकसानकारक होते हैं। और बाबा ने कहा कि आपका जो रूहानी मेकअप है न उसमें कोई खर्चा है और ना ही कोई नुकसान है। बाबा कहते हैं ये रूहानी मेकअप करो, इस रूहानी मेकअप करने से आप खूबसूरत लगेंगे। दुनिया में लोग मेकअप क्यों करते हैं? अपनी बदसूरती को छिपाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन वो देखने में सुंदर लगने लगता है। तो आप भी अगर ये रूहानी मेकअप करेंगे तो पहले आप जो भी हों, जैसे भी हों, लेकिन ये मेकअप करने के बाद आप फरिश्ता लगने लगेंगे। पॉइंट है स्नेह। तो बाबा ने कहा आपके जीवन में स्नेह के सिवाय और है ये क्या? आप स्नेह में उठते हो, स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, स्नेह में बाप के साथ हाथ में हाथ देकर चलते हो तो आपके जीवन में स्नेह ही स्नेह है। तो जैसे बाप स्नेह का सागर है, वैसे आप बच्चे भी स्नेही स्वरूप हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप के हाथ में हाथ दे करके चलते चलो। तो बाबा पूछते हैं कि बाप के हाथ में हाथ देकर चलते हो, यह कंपनी ने आपको पसंद है या कोई दूसरा और भी कोई कंपनी आपको चाहिए, दूसरा कोई साथी चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई दूसरा साथी बनाएंगे, बनाने का संकल्प भी करेंगे, तो बाबा कहते हैं वहां अनेक प्रकार के दुख और धोखा है, क्योंकि संसार की आत्माओं वर्तमान समय सभी के जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार की डिमांड्स हैं, और उन इच्छाओं को यदि पूर्ण नहीं करते हैं तो उनसे दुख और धोखा प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा कि आपका जो साथी है, आपको ऐसा साथी मिला हुआ है जिससे ना कभी आपको कोई दुख मिलेगा, ना कभी इससे आपका कोई धोखा मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प तो धोखा खाया, और अभी आपको उस धोखे खाने से, उस दुख खाने से बाप ने बाहर निकाला, तो कभी भी ये ख्याल भी ना आए कि और कोई साथी बनाया जाए। अगले पॉइंट से यूरोप वासी बच्चों की विशेषता, बाबा का आज्ञाकारी है। बाबा ने हर वर्ष उनको जो भी होमवर्क दिया कि विदेश से विशेष गुलदस्ता लेकर के आना, तो बाबा कहते हैं उन्होंने बाप की हर आज्ञा का पालन किया। बाबा ने जो कहा उसको उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो बाबा कहते हैं यूरोप के बच्चों की यह विशेषता है कि बाप ने जो उनको आज्ञा दी, श्रीमत दी, जो उनको कार्य सौंपा, उसको प्रैक्टिकल में किया। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको बाप से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अगला है यूके ग्रुप से मुलाकात, उसमें विशेष पांच बातें हैं। उसमें पहली बात है कि यूके लंदन विदेश सेवा का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा कि वृक्ष फल कितना भी विस्तार को पाए, कितना भी उससे टाल टालियां निकले, लेकिन फाउंडेशन का हमेशा ही महत्व रहता है, क्योंकि फाउंडेशन से उनकी विशेष पालना होती है। तो बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार की शाखाएं निकली जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से अपने अपनी सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन सभी का कनेक्शन फाउंडेशन से है, और फाउंडेशन कौन है? वो लंदन यूके। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने कहा कि वहां अनन्य बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है। दादी जानकी जी के लिए बाबा ने ये बात कही होगी। तो बाबा ने कहा कि जो अनन्य बच्चे हैं वो वहां निमित्त बने हुए हैं, और बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में सेवाओं के विस्तार के लिए या स्वोन्नति के लिए जो अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो प्लान्स बनाए जाते हैं, उसका आधार भी यूके है। बाबा कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी बातें, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उन परिस्थितियों को सॉल्व करने के लिए उस समय हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना योग्य नहीं होता है जो भगवान के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ करके उसे समस्या का हल ढूंढ सकें। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय के लिए ऐसे साकार माध्यम, ऐसी विशेष आत्माएं, अनन्य आत्माएं निमित्त बनी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर उन आत्माओं से सहयोग लेंगे तो आपका समय, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं बाप तो साथी है ही, बाप के बिना तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन ऐसे समय के लिए जिस समय आपका बुद्धि योग बाप के साथ नहीं जुट रहा है, उस समय पर अपनी स्वोन्नति के लिए या सेवा के लिए इन आत्माओं का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है, उन आत्माओं से अपना कांटेक्ट रखना आवश्यक है। इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है स्वपुरुषार्थ में या सेवाओं में, तो बाबा ने जो विशेष निमित्त आत्माएं चुनी है, जिनको निमित्त बनाया हुआ है, उनके साथ सदा कनेक्शन होना आवश्यक है। उनके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हुए स्वपुरुषार्थ में भी आगे बढ़ते रहेंगे और साथ साथ सेवाओं को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तीसरी पॉइंट है बाबा का चैरिटी बिगिंस एट होम। तीसरी पॉइंट है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहते हैं वहां पर जो भी बाबा के बच्चे जो ज्ञान में निकलते हैं, वो सबसे पहले अपने उस एरिया का कल्याण करते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहां के बच्चों की जो विशेषता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात वहां के अपने लोकल एरिया का कल्याण करते हैं, वहां की सेवाओं में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगली पॉइंट है टीचर्स। तो बाबा ने कहा कि वहां जो भी टीचर्स हैं वो विशेषकर भाई हैं, जो वहां सेवाएं करके अन्य आत्माओं को बाप का संदेश दे करके, बाप के बच्चे बना करके बाप के वारिस बनाते हैं। तो बाबा ने कहा वहां विशेष पांडव निमित्त हैं। साथ साथ बाबा ने यह भी कहा कि शक्तियां भी आवश्यक हैं, शक्तियां तो निमित्त हैं ही, लेकिन वहां उस एरिया में विशेष पांडव निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण संसार में, इस ईश्वरीय कारोबार में, भगवान की सेवा में दोनों का इंपॉर्टेंस है। पांडव भी चाहिए तो शक्तियां भी चाहिए। शक्तियों से सेंटर की रौनक होती है, रिमझिम रहती है, और पांडवों से सेवाओं में वृद्धि होती है। तो बाबा ने कहा पांडव भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, लेकिन वहां विशेष पांडव टीचर्स बने हुए हैं। अगली पांचवी पॉइंट है दृढ़ता का पाने सफलता का फल। तो बाबा ने कहा कि जहां दृढ़ता है वहां सफलता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वहां जो भी सेवाएं करते हैं, बाबा ने कहा कि उनमें दृढ़ता की विशेषता है, और ये दृढ़ता उनके लिए विशेष पानी का काम करता है। तो जहां दृढ़ता का पानी है वहां सफलता का वृक्ष फलीभूत निश्चित होता है। तो ये थी यूपी के भाई बहनों से मुलाकात, इसमें पांच बातें थी। कौन कौन सी पांच बातें? पहली बात, ये फाउंडेशन है, विदेश सेवा का विशेष फाउंडेशन है, जहां से अन्य स्थानों की सेवाएं शुरू हुई है, जहां से अन्य स्थानों का कनेक्शन भी उस स्थान से लंदन से सभी का बना हुआ है, कनेक्शन है। दूसरी पॉइंट्स के वहां अनन्य बच्चे निमित्त बने हुए हैं। और तीसरी पॉइंट चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी आत्माएं वहां ज्ञान में निकली वो स्वयं वहां पर टीचर बनकर के सेवाओं के निमित्त बनी हुई है और वहां के सेवा केंद्रों को संभाल रहे। चौथी पॉइंट थी कि वहां टीचर जो है वो विशेषकर पांडव हैं, शक्तियां तो हैं लेकिन पांडव वहां विशेष निमित्त बने हुए हैं और सेवाओं में दोनों की जरूरत है। शक्तियों से सेवा केंद्र की रौनक रहती है और पांडवों से सेवा की वृद्धि होती है। पांचवी पॉइंट दृढ़ता का पानी और सफलता का वृक्ष फल। तो जहां दृढ़ता का पानी है, जहां दृढ़ता है वहां किसी भी कार्य में सफलता ना प्राप्त हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अगला चौथा भाग है बाप दादा की दुआएं प्राप्त करनी है तो आज्ञाकारी बनो। इसमें विशेषकर 10 बातें हैं और ये अलग अलग मूल्यों से ये बातें दी गई हैं। तो उसमें पहली पॉइंट्स है, बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने जो भी आज्ञा दी है, जो भी श्रीमत दी है, तो उसको जो कहा जैसा कहा उसको उसी रूप से फॉलो करना, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स न करना, इसे कहते हैं नंबर वन आज्ञाकारी, नंबर वन आज्ञाकारी। तो सबसे पहली बात है उसमें बाप दादा की आज्ञा है कि एक मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे इस आज्ञा को पालन करते हैं, इस आज्ञा को फॉलो करते हैं, एक बाप के साथ अपने सर्व संबंध निभाकर रख करके एक बाप को ही याद करते हैं, जैसे बाबा ने आज के वरदान में कहा है कि जब भी कोई कार्य करते हो तो उस कार्य में अन्य आत्माओं को याद ना करके पहले बाप को याद करना है, बाप का सहयोग लेना है, एक बाप को अपना आधार बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप की पहली आज्ञा है कि मुझ एक बाप को याद करो, जो बच्चे इस आज्ञा को पालन करते हैं उनको बाप से विशेष दुआएं मिलती हैं और उनके जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। दूसरी पॉइंट है, बाप की आज्ञा है कि अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में कैसे चलना है, कैसे रहना है, उसके लिए बाबा ने स्पष्ट आज्ञा दी हुई है। तो जो बच्चे इस आज्ञा को फॉलो करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में, हमें कैसे संबंध संपर्क में आना है, हमारी मनसा कैसी हो, वाचा कैसी हो, तो बाबा ने कहा जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं वो बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं। तीसरी पॉइंट है, बाप की आज्ञा है ना किसी को दुख दो ना दुख लो। तो बाबा यहां शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे एक काम तो करते हैं कि किसी को दुख नहीं देते, किसी को दुख तो नहीं देते लेकिन दुख ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब दूसरों के व्यवहार से, दूसरों के शब्दों से दुख ले लेते हैं तो वहां व्यर्थ संकल्प करने के मार्जिन होती है। तो बाबा कहते हैं ना किसी से दुख लो और ना किसी को दुख दो, इस स्लोगन को हमें पूरा पक्का करना है, इन दोनों बातों को हमें जीवन में अप्लाई करना है। चौथी पॉइंट है, फाइव मंकी, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। तो बाबा ने कहा बाप की आज्ञा है कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन बच्चों को बाप से विशेष दुआएं प्राप्त होती हैं और उन दुआओं के माध्यम से वो अपने जीवन में आगे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं, सफलता का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे चरित्र का अभी चित्र बनाओ जिसमें ये पांच बातें नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट से, बाप दादा की आज्ञा है तन मन धन और जन, इन चारों ही बातों को बाप की अमानत समझो। तो बाबा ने कहा जब इनको बाप की अमानत समझेंगे और उसके माध्यम से आप इनको जिस भी कार्य में यूज करेंगे उनसे हमेशा ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, और ऐसा बाप की आज्ञा का फॉलो करने वाले, बाप की आज्ञा को पालन करने वाले बच्चों को बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। अगली पॉइंट है, बाबा का दृष्टि और वृत्ति के लिए भी बाप की आज्ञा मिली हुई है कि आपकी दृष्टि कैसे हो, दृष्टि में हर आत्मा के प्रति भाई भाई का भाव, आपकी दृष्टि में हर आत्मा के प्रति रूहानियत का भाव, वृत्ति में सबके प्रति शुभ का शुभ भावना शुभ कामना समाई हुई हो, तो दृष्टि वृत्ति के लिए भी बाप की आज्ञा मिली हुई है। अगली पॉइंट है बॉडी कॉन्शियसनेस का, उसको समाप्त करो। बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस विशेष दो रूप में आता है, मैं और मेरेपन, मेरेपन के रूप में, और ये माया के आने के दरवाजे हैं, दो दरवाजे हैं। तो बाबा कहते हैं दरवाजों को बंद करो। तो जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से विशेष दुआएं प्राप्त होती हैं। अगले नाइन्थ पॉइंट है संकल्प समय और श्वास, इसको जमा करो। ये खजाने हैं ब्राह्मण जीवन के, ये अनमोल खजाने हैं, इन खजानों को वेस्ट ना करके इनको जमा करो। तो जो बच्चे इस खजानों को जमा करते हैं उनको बाप से विशेष दुआएं प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद प्राप्त होती है। और लास्ट दसवें पॉइंट से बाप की मुख्य और पहली आज्ञा, पवित्र बनो कामजीत बनो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस आज्ञा को पालन करने में फुल पास है, लेकिन इसका जो साथी है क्रोध, उसमें आधे पास है, उसमें आधे फेल है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि हम क्रोध तो नहीं करते लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना पड़ता है, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा कि ये बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ ना, बाप की आज्ञा का उल्लंघन तो किया, ये अवज्ञा तो हुई। तो जहां अवज्ञा है वहां बाप से दुआएं प्राप्त नहीं होंगी। तो बाबा ने पांचों बेकारों के लिए कहा कि इन बेकारों को अपने जीवन से समाप्त करो। उसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि इस कारण से हमने इस बात को जीवन में यूज किया। तो बाबा ने कहा कि रोग जो है वो भी एक विकार है, उसको उस पर भी आपको जीत प्राप्त करनी है। तो बाबा की दसवीं आज्ञा कौन सी थी, पवित्र बनो कामजीत बनो। तो बाबा ने कहा इसके साथ साथ बाकी और जो विकार हैं जैसे क्रोध, तो उस पर भी विजय प्राप्त करनी है, उस पर भी जीत पाएंगे तो बाप की दुआओं के पात्र बनेंगे। और अगला पांचवा भाग है बाप की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली आत्माओं के जीवन में उसके फायदे, उससे क्या क्या फायदे प्राप्त होते हैं। तो उसमें पहली बात है कि वो मेहनत मुक्त होंगे। बाबा ने कहा जो बाप की आज्ञा को पालन करते हैं, जो बाप की आज्ञा को फॉलो करते हैं, और ऐसी आत्माएं जो बाप से दुआएं प्राप्त होती है, वो जीवन में कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे, चाहे स्वपुरुषार्थ में या सेवाओं में, चाहे संबंध संपर्क निभाने में। जीवन में अनेक प्रकार की बातें होती हैं, उन बातों के होते हुए भी उनको मेहनत का अनुभव नहीं होगा, जीवन में सही सफलता का अनुभव करेंगे। दूसरी बात है विशेष फल की प्राप्ति, बाप की जो बाबा की आशीर्वाद के रूप में अनुभूति होगी, विशेष फल की प्राप्ति बाप की आशीर्वाद के रूप में अनुभूति होगी। भगवान की आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, उसका अनुभव हो, ये ब्राह्मण जीवन के लिए सबसे बड़ा फल है। तो बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो बाप की दुआओं के पात्र बच्चे हैं, वो जीवन में बाप की आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रही है उसकी अनुभूति करते रहेंगे। तीसरी पॉइंट है संतुष्टता, बाबा ने कहा उनका जीवन में संतुष्टता होगी स्वयं के प्रति भी, और जो सेवाएं करते हैं, जो कामकाज करते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकलती है उस रिजल्ट से भी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं वो हमने बाप की आज्ञा प्रमाण किया है। तो बाप की आज्ञा प्रमाण जो भी कार्य करेंगे उसका जो रिजल्ट निकलेगी उससे वो संतुष्ट रहेंगे। और तीसरी बात है अन्य आत्माओं से भी, अन्य आत्माएं उससे संतुष्ट रहेंगी, संबंध संपर्क वाले आत्माएं भी संतुष्ट होंगी। पांचवी पॉइंट है कि कोई भी कार्य करते हुए उनका मन बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रहे वो बाप की श्रीमत प्रमाण कर रहे। तो बाप की श्रीमत प्रमाण कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में सफलता हुई या असफलता हुई, उन दोनों बातों से उनका मन बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगा, अप्रभावित रहेगा। तो ये उसका एक फायदा है। अगली पॉइंट है सदा हल्कापन। वो आत्मस्था हल्केपन का अनुभव करेंगे, सब कुछ करते हुए अपने आप को लाइट स्थिति का अपने आप को लाइट स्थिति में अनुभव करते रहेंगे। ये छठा फायदा है। और सातवां फायदा आंतरिक बल, अतीन्द्रिय सुख और भरपूरता का अनुभव करेंगे। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो बाप की दुआओं के पात्र बच्चे हैं, जो भगवान से दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, बाबा कहते हैं वो जीवन में आंतरिक बल का अनुभव कर रहे हैं कि भगवान से हमें वो बल हमेशा प्राप्त होता रहता है। और उस बल को वो अनुभव करेंगे कि हमारे पास वो ईश्वरीय बल है, आध्यात्मिक बल है, साथ साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तीसरी बात, जीवन में हमेशा भरपूरता का अनुभव करेंगे, कभी भी खाली खाली खालीपन नहीं होगा। जीवन में बीच बीच में लोग कहते हैं ना, आज थोड़ा खाली लग रहा है, और जहां खालीपन होता है वहां पर उदासी मायूसी होती है। लेकिन जो बाप की आज्ञाकारी है, सपूत हैं, जो बाप से दुआएं प्राप्त करते हैं, बाबा का उनके जीवन में ये तीन बातें उनको अनुभव होंगी, आंतरिक बल, आंतरिक बिल पावर उनको अनुभव होगा, दूसरी बात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, तीसरी बात भरपूरता का अनुभव होगा। तो ये बाबा की आज की अव्यक्त मूल्य है। और बाबा ने आज के वरदान में विशेष दो बातें कही। पहली बात है कि अमृत वेले बाप से सुख की अनुभूति करो, कनेक्शन जोड़ करके बाप से सुख लो और संसार की आत्माओं को दो। दूसरी बात, जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो पहले बाप को याद करो, क्योंकि संसार में या ब्राह्मण संसार में हम सभी ये भूल करते हैं कि पहले जो साकार में जो साथी सहयोगी होते हैं उन आत्माओं को पहले याद करते हैं, जब उनसे सहयोग नहीं मिलता है फिर ऊपर वाले को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा पहले बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा इससे आप न्यारे प्यारे और निर्मोही बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है विजयी बनने के लिए कौन सी दो बातें चाहिए, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री। किसी काम के लिए, माया को देखने और जानने के लिए। तो बाबा ने कहा माया को देखने और जानने के लिए त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनो, तो जीवन में आप विजयी बनेंगे। तो आज की बाबा की ये अव्यक्त मूल्य थी जो आप हम सभी ने रिवाइज की। ओम शांति।